जीवन को अक्सर एक यात्रा के रूप में चित्रित किया गया है और ये यात्रा तीन प्रकार की गाड़ी में, तीन प्रकार के वाहन में चलती है। पहला वाहन एक बैलगाड़ी की तरह है। इसका लक्ष्य होता है, वास्तव में इसका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन जो लक्ष्य समाज, परिवार, परंपरागत हम लोगों के सामने रख दिया जाता है, विशेषकर जीवन यापन, इस लक्ष्य को लेकर ये गाड़ी चलती है। और इसमें जो ऊर्जा होती है वो बड़ी विचित्र ऊर्जा होती है, जैसे घड़ी को चाबी दे देते हैं तो अनवाइंड कर दी जाती है, तो उसी प्रकार से ये चाबी के खिलौने की तरह है। इसमें प्रकृति ने चाबी जितनी भरी है उतना वो अनवाइंड करती हुई चलती जाती है, धीरे 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 करके। और इसकी जो स्टीयरिंग कंपास है, जो दिशा देता है, वो है रूढ़िगत परंपरागत विचार एवं धारणाएं, उसी के अनुसार व्यक्ति गाड़ी को चलाता है, जिसको कहते हैं लीक पर चलना। और इसके अंदर एक जो यात्री हैं उनको सुरक्षा की भावना महसूस होती है, लेकिन प्रगति, विकास, इन चीज़ों का इसमें कोई स्थान नहीं होता। सुरक्षा अपनी, परिवार की, और इसी हिसाब से गाड़ी चलती जाती है। बहुत दूर नहीं जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करती है, इसीलिए बार बार आना पड़ता है व्यक्ति को गाड़ी बदलने के लिए। एक दूसरी गाड़ी है जिसमें ऊर्जा जो होती है वो कामनाओं की ऊर्जा होती है, और इसका लक्ष्य होता है सफलता, अहंकार के जीवन की सफलता, उसका एक्सपेंशन। ये गाड़ी बड़ी विचित्र है, कभी तो तेज चलती है, कभी इसकी टक्कर हो जाती है, कभी अचानक ये इस प्रकार से चलती है मानो रास्ते में कोई और गाड़ी चलाने वाला ही ना हो, और इस कारण बहुत बार, बहुधा इसमें आगे चलकर डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन एक्सीडेंट की संभावना बहुत अधिक होती है इसमें। इसमें जो यात्री बैठा होता है वो हर बाहर वाले से प्रतिस्पर्धा करता है कि मेरी गाड़ी आगे जा रही है या उसकी गाड़ी पीछे रही है, इसको छोड़ के चलो, उसको उसके आगे चलो, जैसे कोई रेस में भाग रहा हो। और इसका कंपास जो होता है वो होता है व्यक्तिगत सफलता, अपने अहंकार की सफलता, ये उसका कंपास है, तो वो उस दिशा में जाएगी जहाँ उसको सफलता मिलेगी। जैसे जो पहला वाहन है वो उस दिशा में जाएगा जहाँ उसके रूढ़िगत परंपराओं की मान्यता मिलेगी, दूसरी जगह वो नहीं जाएगी गाड़ी, क्योंकि उसमें उसको सुरक्षा, कंफर्ट जोन महसूस होता है। किंतु इस गाड़ी में वो आगे जाती है और उसका कंपास होता है व्यक्तिगत सफलता, महत्वाकांक्षा, और उसके अनुसार वो गाड़ी चलती रहती है। फिर एक तीसरे प्रकार का वाहन है, वो बहुत बैलेंस्ड ढंग से चलती गाड़ी। इसका लक्ष्य होता है धर्म और इसका कंपास होता है कर्तव्य, जो कर्तव्य है उसके अनुसार, और जो धर्म है उस ओर जाना है, और वही इसका कंपास होता है जो बताता है कि जो चीज़ कर्तव्य है, जो शास्त्र सम्मत है उसके अनुसार चलना है, जो चीज़ शास्त्र सम्मत नहीं है, यहाँ शास्त्र से किसी कुछ किताबों की बात नहीं हो रही है, किंतु जो जो धर्म की ओर हमको ले जाता है। और ये गाड़ी ज़्यादातर जीवन को स्मूथ, हारमोनियसली ले जाती है। ये तीन प्रकार के वाहन हैं, ये तीनों हम लोगों को योग यात्रा से अगर हम जोड़ें तो पहला वाहन हमको योग यात्रा के लिए सूटेबल नहीं है, वो तो केवल हमको उसके उसमें बैठे हुए हम पुस्तक पढ़ सकते हैं योग यात्रा की, कि उस पर्वत पे अगर चढ़ना है तो पर्वत कैसा है, हम बैठ करके वाहन में एक किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी अधिकतर हम वे किताबें पढ़ेंगे जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती हैं। दूसरा वाहन है जो हमको हो सकता है कि उस पर्वत के आसपास तक ले जाए, तलहटी तक ले जाए, परंतु उसके आगे ये सक्षम नहीं है ऊपर चढ़ने में। और तीसरा वाहन हमको उसके बेस तक ले जा करके वहाँ चक्कर काट सकता है, लेकिन ये बिल्कुल शिखर तक नहीं ले जा सकता। ये तीनों वाहन हैं, तमो प्रधान, रजत प्रधान और सत्व प्रधान गुण, जिनके आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है। परंतु योग यात्रा के लिए ये एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, इसीलिए इसको जो योग यात्रा पे बढ़ते थे उनको हमारे अध्यात्म उसमें परंपराओं में कहा जाता था द्विज, ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न वे होते थे जिन्होंने पहला जन्म हमारा ये शरीर मन प्राण इसके अंदर होता है, हम इससे आइडेंटिफाइड होते हैं, यही मैं हूँ ऐसा समझते हैं, और इससे जो जुड़े हैं उन्हीं को अपना समझते हैं। परंतु जब दूसरा जन्म होता है जिसको इनिशिएशन कहा जाता था, दीक्षा कही जाती थी, वो एक उसमें एक नया लक्ष्य होता है, एक नई ऊर्जा होती है, एक नया कंपास होता है और एक नया वाहन आवश्यक होता है। उस जो ये तीनों वाहन है इस पर चल के हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, हम स्वप्न देख सकते हैं वहां पहुंचने के परंतु पहुंच नहीं सकते, वो हमको कुछ दूर तक ले जाएगा, और यदि उससे हमें संतोष है तो ठीक है, शायद इस जन्म की यात्रा उतनी ही थी। परंतु इसके आगे बढ़ने के लिए जो वाहन है वो ना हमारी परंपरागत विचारों से चलेगा, ना वो हमारी प्राण की कामना वासना से चलेगा, ना वो कर्तव्य से चलेगा, उसके अंदर एक नया फ्यूल चाहिए। जैसे आजकल गाड़ियां चलती हैं, पहले कोयला इंजन था, स्टीम इंजन था, फिर इलेक्ट्रिकल, अब सोलर से चलने की तैयारी है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा चाहिए वो माँ भगवती की शक्ति, वो चलाती है उस गाड़ी को, वो कोई और वाहन, कोई और ईंधन उसको ले नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, वो टूट जाएगी गाड़ी। और उसका जो कंपास होता है वो फेथ होता है, फेथ डायरेक्ट करता है, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में जाती है जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर पढ़ा था माँ का वाक्य, फेथ इज द श्योरेस्ट गाइड इन द डार्केस्ट डेज। तो फेथ उसका कंपास होता है, उसका लक्ष्य होता है भगवान के प्रति अपना शेष निशेष समर्पण, उसका लक्ष्य ये होता है कि पूरी तरह मैं भगवान का हो जाऊं। अक्सर लोग प्रारंभ में ही, क्योंकि हम लोगों के बैकग्राउंड होता है, तो साधना में भी हम लोग उसी तरह से एक लक्ष्य बना लेते हैं, एक महत्वाकांक्षा का फील बना लेते हैं, साधना में कुछ प्राप्त करना, कोई एक्सपीरियंस होना, कोई रियलाइजेशन होना, ये भी एक अहंकार का खेल शुरू हो जाता है, ये भी एक महत्वाकांक्षा है। और जब तक हम महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तब तक वास्तव में वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि उसमें जो ईंधन हमने डाला हुआ है वो कामना का ईंधन डाला हुआ है। इवन एक्सपीरियंस और रियलाइज करना एक प्रकार का वाइटल का खेल हो जाते हैं। ये नहीं कि एक्सपीरियंस रियलाइजेशन नहीं होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, किंतु साधना एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन के लिए नहीं की जाती। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक्सपीरियंसेस होंगे, रियलाइजेशन भी होंगे, लेकिन उनको लक्ष्य लेकर के कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। जैसे कि अक्सर लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, कहीं पैसा लगाते हैं, तो जब हम ऊर्जा इस भाव से लगाते हैं कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त होगा, तो प्रारंभ में ही अहंकार का बीज उसके अंदर चला जाता है, जो सब साधना को आगे चल के विषाक्त करता रहता है। माता जी एक जगह कहती हैं, एम्बिशन इज द कैंकर। जैसे कुछ ऐसे फल होते हैं जिसको आप काटें तो अंदर में कीड़ा निकलता है। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि अंदर कीड़ा पहुंचा कैसे, बाहर से सब ठीक है, अंदर कीड़ा कैसे पहुंचा? तो शुरू में ही अगर उसके अंदर कीड़ा है तो उसको अंदर से वो विषाक्त कर देता है। बाहर से फल देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसको आप चखेंगे तो विषाक्त है। उसी प्रकार से जब हम किसी भी ईगो मोटिव को लेकर योग यात्रा में चलते हैं, चाहे वो ईगो मोटिव ये हो, अनेक प्रकार के ईगो मोटिव होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, बड़ा साधक बनना, योगी बनना, स्वामी बनना, लोगों की नज़रों में ऊंचा उठना, गुरु बनना, ऐसा लोग समझें कि ये एडवांस साधक है। इसीलिए मेरी विनती रहेगी कि श्री अरविंद माता जी अक्सर एडवांस साधक, वरिष्ठ साधक आश्रम में इसकी, मैं समझ रहा हूँ कि एक प्रकार से सम्मान पूर्वक कहा जाता है, लेकिन आश्रम में इसकी परंपरा नहीं है और ये उचित भी है, क्योंकि कौन वरिष्ठ साधक है? हो सकता है एक छोटा बच्चा जो आज आया हो उसने ना जाने कितने जन्मों साधना की हो, सुखदेव की तरह जन्म से ही वो ज्ञान प्राप्त हो उसको, या अष्टावक्र की तरह पेट में ही उसको गीता सिद्ध हो गई हो, हम नहीं जानते। और इसलिए वरिष्ठ साधक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। हो सकता है कि यहाँ बच्चे बैठे हों, कल इतनी अच्छी बात पूनम जी ने बताई, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है कोई बहुत ही यंग हो, लेकिन उसके अंदर प्रबल अभिप्सा हो, उसके अंदर ना जाने पुराने जन्मों में उसने क्या क्या प्राप्त किया वो लेकर के आया हो। और कोई व्यक्ति जिसने 50-60 साल इस योग यात्रा में लगाए, वास्तव में वो प्रारंभ कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, तो किसी प्रकार का भी एम्बिशन, विशेषकर आध्यात्मिक एम्बिशन, ये श्री अरविंद बार बार स्पष्ट करते हैं अपने एक पत्र में विशेष रूप से, द गोल ऑफ दिस योगा इज नॉट टू बिकम ए सन्यासी, तपस्वी, योगी इत्यादि इत्यादि। इट इज नॉट टू बिकम ए सेंट, सेंटहुड, ये सब इस योग के लक्ष्य नहीं है। ये संत, महात्मा, ज्ञानी, इस योग का फिर लक्ष्य क्या है? कहते हैं टू लिव इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस, भागवत चेतना में निवास करना। सुनने लग से लगता है तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही सरल है, इसमें समस्या क्या है? बिल्कुल वैसी ही समस्या है जैसे किसी को कहा जाए माउंट एवरेस्ट में चढ़ के घर बना लो। सबसे पहले तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। अगर वो प्रैक्टिशनर नहीं है तो वहां जाकर जाने के बहुत पहले ही श्वास त्याग देगा। दूसरा, वहां पर जो वाइट इटर्निटी है, जो अचानक न मोबाइल काम कर रहा है न कुछ और, एकाकीपन, उससे वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। तीसरा, वह सब कुछ शायद उसे पीछे छोड़ना पड़े जो आगे बढ़ने में उसके लिए बोझा बनता है। और ये स्टेज पर डिपेंड करता है। जब आदमी माउंट एवरेस्ट या उससे कहीं नीचे, माउंट एवरेस्ट चढ़ना तो हर किसी का नहीं, पर फिर भी निकलता है तो अपने घरों से खूब सारी चीज़ें लेके निकलता है, टिफिन भी होगा, किताबें भी होंगी, लोग भी होंगे। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो चीज़ों की उपयोगिता नहीं है, वही चीज़ जो आवश्यक थी वो अब अनुपयोगी होती है और वो छूटती जाती है, क्योंकि उसके सामने उसको वहाँ तक पहुँचना उसका लक्ष्य होता है। एक बड़ी सुंदर सी एक कहानी है, सच्ची कहानी है, शेकल्टन जिन्होंने पहली बार एंटार्क्टिका जाने का प्रयास किया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उनका पहला व्यक्ति था जिसने जहाज पर एंटार्क्टिका जाने की चेष्टा की और ये मिशन उनका फेल हो गया। लेकिन शेकल्टन को सबसे अच्छा कप्तान माना जाता है किसी शिप का, यानी एक आदमी जो फेल हुआ अपने मिशन में उसको इतना लोगों ने मान सम्मान दिया है। और उसका कारण ये है कि उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, अब तो आराम से चले जाते हैं लोग एंटार्क्टिका, टूरिज्म भी होता है एंटार्क्टिका जाने का, लेकिन उस समय जब कोई सुविधा नहीं थी, जहाज भी उतने इक्विप नहीं थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, उसने एक नया रास्ता चौकआउट किया था। और नेचुरली वो शिप का नाम बड़ा अजीब था, एंड्योरेंस, और एंड्योरेंस के जहाज वो जा रहा था और टकराया एक हिमखंड से और जहाज खुद ही टूट गया दो भागों में। 1.5 साल इसने और इसके साथियों ने कैसे गुजारे हैं और अल्टीमेटली कैसे पहुंचे हैं, वो एक अपने आप में बड़ी अद्भुत कहानी है, अवेलेबल है, इट मस्ट बी रेड बाय ऑल हु वांट टू टेक द योगा जर्नी। योग यात्रा से उसका बड़ा संबंध है क्योंकि इसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो अब जब इनका ये टूट गया जहाज, तो सबसे बड़ी समस्या आएगी, उन्होंने पास के एक हिमखंड पे चीज़ें उतारी रखी, लेकिन अब वो हिमखंड जहाज की तरह नहीं है कि ये सब कुछ ले सके, तो इनको कई चीज़ें डिस्कार्ड करनी पड़ी। कई बार अपने सामान को डिस्कार्ड, खाने के भोजन की सामग्री को डिस्कार्ड करना पड़ा, लेकिन फिर भोजन कैसे करेंगे? तो इन्होंने आपद धर्म सील, जिसको मारा नहीं जाता है, सील को मार करके उसी के चर्बी से वो तेल का उपयोग करते थे अग्नि के लिए और उसी के मांस को भक्षण करते थे, इस प्रकार से ये लोग जिए। लेकिन उसमें एक जो टचिंग बात थी वो ये थी कि जब ये चीज़ें डिस्कार्ड की जा रही थी तो उसके कप्तान ने कहा, देखो केवल जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं वो रखो, बाकी सब डिस्कार्ड कर दो। तो वो सब सोच में पड़ गए, तो इसने कहा मैं ही, इसको मन में विचार आया कि मैं ही सबसे पहले करूँ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। तो उन्होंने पहले बाहर की चीज़ें डिस्कार्ड करी, फिर अपने पॉकेट से बाइबिल निकाली, बाइबिल सबके पास थी, और इस खतरे के मुहूर्त समय में तो बाइबिल ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इन्होंने बाइबल निकाली, सबकी ओर देखा, उसको खोला, एक उनका फेवरेट पन्ना था उसको फाड़ा, उस पन्ने को मोड़कर अपने पॉकेट में रखा और बाइबल को फेंक दी। वेरी वेरी सिंबॉलिक स्टोरी। एक टाइम आता है योग यात्रा में जिसको कहते हैं शब्द ब्रह्मति वर्तते। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ सीखा है, वो भी हमको भगवान के हाथों में समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर है। माता जी ने जब ये वाक्य हम पढ़ते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। माँ कहती है कि इट इज द रियल एडवेंचर। व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई एम इनवाइटिंग टू एन एडवेंचर, इट इज अ रियल एडवेंचर। रियल एडवेंचर इन द सेंस कि जो कुछ तुमने अब तक जाना है, ऑल द फोरसीन, ऑल द अनएक्सपेक्टेड, द अनफोरसीन इज बिफोर यू। तुमने जितना भी बाहरी ज्ञान अर्जित किया है, जितना भी अंदर में ज्ञान अर्जित किया है, एक समय आएगा जब उसके भी पार तुमको जाना पड़ेगा। वो घड़ी होती है जिसको समर्पण की घड़ी कहते हैं, वास्तव में कही जा सकती है। जो कुछ भी, बड़ी सुंदर एक श्री अरविंद की कविता है, कल हम लोग कविताओं की बात कर रहे थे, और उसका नाम है महात्मा। महात्मा में श्री अरविंद बताते हैं कि महात्मा एक कंसेप्शन है थियोसोफिस्ट में, कि महात्मा कुछ होते हैं जो उस चेतना में निवास करते हैं और धरती के प्राणियों को गाइड करते हैं, मास्टर्स होते हैं। तो ये मास्टर कैसे बनते हैं, कैसे इनको महात्मा की पदवी मिलती है? तो आई एम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन बट आई शुड रीड ए फ्यू लाइन्स। कल कविता की बात भी हो रही थी, ये सॉनेट नहीं है, लेकिन जस्ट ए फ्यू लाइन्स आई विल रीड। तो महात्मा के कंसेप्शन में ये एक महात्मा है जो बता रहे हैं कुटमी कि कैसे मैं महात्मा बना, और उसमें वो बताते हैं कि पहले मैं भी एक साधारण मनुष्य की तरह था और मेरे अंदर भी वही सारी चीजें थी जो किसी अन्य व्यक्ति के अंदर होती हैं। 83 पेज पर है ये, पुराने एडिशन में, आई डोंट नो न्यू एडिशन में तो सब अभी बदला बदला सा है। तो पहले ये वर्णन करते हैं कि मैं कैसे, सबकी तरह मेरे भी साधारण लक्ष्य थे और इसी प्रकार मैं जीता था। फिर धीरे 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 उनके हृदय में एक भाव उठा, एक अभिप्सा उठी कि मैं योग करना चाहता हूँ, और इस भाव से वो महर्षि द्वैपायन व्यास के पास जाते हैं कि मैं योग करना चाहता हूँ, मुझे आप योग के बारे में कुछ बताइए। और अब उनकी वाणी, ही क्राइड, ही इज द्वैपायन व्यास, कुटमी, नाउ गैदर बैक व्हाट दाउ हैस्ट अर्नड इन मैनी लाइव्स, रिमेंबर ऑल दाई पास्ट, सीज फ्रॉम दाई राउंड ऑफ ह्यूमन बर्थ्स, रिज्यूम द एट फोल्ड पावर दैट मेक्स ए मैन एज गॉड, देन कम अगेन एंड लर्न द ग्रैंडियोज वर्क फॉर दाउ आर्ट ऑफ द सोल्स टू डेथ डिनाइड। तो अब तक जो कुछ सीखा है उसके मूल को, एसेंस को गैदर करो। अगर हम साधारण जीवन भी देखें जिसकी बात हो रही थी, उसमें भी वास्तव में वही तत्व चलते हैं साथ में जो बाद में योग यात्रा के काम आते हैं, लेकिन वो बीज रूप में चलते हैं। साधारण जीवन में भी त्याग चलता है, तपस्या चलती है, समर्पण चलता है, श्रद्धा चलता है, निष्ठा चलती है, ये सब चीज़ें चलती हैं। कोई व्यक्ति इनके बिना सफल नहीं हो सकता, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि इनका डायरेक्शन बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति एक बार किसी की टॉक में, एक बच्चा आता था, पांचवें दिन उनके अंतिम दिन उनके पिताजी आए। पिताजी बहुत बड़े मिनिस्टर थे, तो आकर बोले मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो बोलता है कि बहुत अच्छा टॉक होती है, लेकिन मैं आ नहीं सका, पहले दिन किसी इस कार्य में व्यस्त हो गया, अगले दिन वाइफ को ले जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए, तीसरे दिन बेटी आ गई मेरे घर पे तो उसकी देखभाल करनी थी, चौथे दिन हमारी एक अर्जेंट मीटिंग हो गई, आज थोड़ी फुर्सत मिली है तो मैं आया हूँ। और अंत में कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप ये समर्पण समर्पण क्या कह रहे थे, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे, समर्पण क्या होता है? तो स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा, देखो समर्पण तो आप जानते हो और आप रोज इसको कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? पहले दिन आपने समर्पण किया अपनी किसी इच्छा के प्रति, इसलिए आप उसके अनुसार गए। दूसरे दिन आपने समर्पण किया अपनी पत्नी को, इसलिए उसको आप बाजार से जो कुछ लेना था उसके लिए चले गए। तीसरे दिन आपने समर्पण किया अपनी अपने बेटी के प्रति, और उसके प्रति डिवोशन भी था आपका, निष्ठा भी थी, ये सब तो आपने किया। चौथे दिन आपने समर्पण किया अपने कार्य और मिनिस्टर्स और महत्वाकांक्षा के प्रति, तो आप तो रोज समर्पण कर रहे हो। यही चीज जो आप बाकी जगहों पे कर रहे हो, इसी चीज को आप भगवान के लिए जब करोगे तो ये संपूर्ण हो जाएगा। तो इवन नॉर्मल जीवन में त्याग, तपस्या, यज्ञ, श्री अरविंद कहते हैं सैक्रिफाइस, साधारण जीवन को अगर हम देखें तो कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है। कई बार सच में लगता है कि जितनी सैक्रिफाइस वास्तव में, विशेषकर भारतवर्ष में महिलाएं जितनी सैक्रिफाइस करती हैं जीवन में, आदमी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आई शुड बी पार्शियल, परंतु विशेष रूप से कम अब तक जो रही परंपरा, अब चीजें चेंज हो रही हैं, जितनी त्याग करती हैं, अगर उतना त्याग वास्तव में वो भगवान के लिए करें तो हाफ वे में उनको भगवान मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आदमी देखता है क्या कुछ नहीं छोड़ती हैं वो, कितनी निष्ठा से, कितनी तपस्या से उनकी दिनचर्या होती है, अगर इसी चीज को भगवान के लिए करें तो क्या कुछ नहीं हो जाए। तो वही चीजें जो हम साधारण जीवन में ये तीन गाड़ियों में लेके चलते हैं, उसके पीछे एक एसेंस होता है, और वो एसेंस होता है यज्ञ का। और वही अगर हम ले करके आगे योग यात्रा में जोड़ दें तो इट इज़ ए ग्रेट गेन। तो द्वैपायन व्यास उनको कहते हैं कि पहले तुम उस सारे पास्ट जिसने प्रिपेयर किया उसके एसेंस को अपने अंदर गैदर करो, और अब तुम आगे बढ़ो थ्रू द एट फोल्ड पाथ। अब उसमें ये क्या योग करते हैं, आई डिड द हट योगा इन 3 days विच मैन विद एंग्विश थ्रू 10 lives इफेक्ट नॉट दैट नाउ प्रैक्टिस्ड बाई अर्थ फीबल रेज बट दैट विच रावण न्यू इन लंका ध्रुव फुलफिल्ड हिरण्यकश्यप परफॉर्म्ड द योगा ऑफ द ओल्ड लेमुरियन किंग्स। कौन सा हट योग? मैंने 3 दिन में परफेक्ट किया जो 10 जीवन में मनुष्य करते हैं। वो हट योग नहीं जो आज के समय में किया जाता है, आसन करो ऊपर नीचे, पर वो हट योग जो रावण, हिरण्यकश्यप और ध्रुव ने किया था। वी डोंट इवन नो व्हाट दैट हट योगा वाज। और वो अपने अंदर बहुत शक्ति अर्जित करते हैं। आई फेल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइटन्स इन माई वेन्स द जॉय ऑफ गॉड्स द प्राइड ऑफ सिद्धास टॉल एंड माइटी लाइक ए स्ट्राइडिंग गॉड आई केम टू व्यासा। मेरे अंदर मुझे प्रतीत होने लगा मेरे नस नस में एक असुर की शक्ति और देवताओं का ज्ञान, और उसको लेकर के मैं भरा हुआ इससे प्राइड के साथ व्यास के पास आया कि चलो मैं तैयार हो गया हूं। लेकिन व्यास का बड़ा सुंदर, ही शुक हिज माई लॉक्स, उसने ऐसे अपने केश को हिलाया, जटाओं को, और फिर कहते हैं डिनाइंग मी दाउ आर्ट नॉट प्योर ही क्राइड। कहा ये सब तुमने कर लिया लेकिन अभी तुम पवित्र तो हो ही नहीं, तुम मेरे आसन पे बैठने के लिए तैयार नहीं। ये सब सिद्धियां अर्जित करके, अनेकों अनेक सिद्धियां, फिजिकल सिद्धि, वाइटल सिद्धि, मेंटल सिद्धि, ये सब करके भी मैं पवित्र नहीं हुआ, तो वो फिर से वापस जाते हैं। और जाकर वो क्या करते हैं, आई वेंट इन एंगर टू हिमालय स्पीक्स। ये बड़ी डीप पोयम है, इसके मैं बहुत सुपरफिशियली, तो एक्चुअली इज ए वर्थ वर्कशॉप दिस होल पोयम। तो कहते हैं मैं क्रोध में हिमालय में चला गया और वहां मैंने क्या किया, एंड ऑन द हाइएस्ट इन द ब्रेथलेस स्नो सैट डम्ब फॉर मेनी इयर्स देन नॉलेज केम स्ट्रीमिंग अपॉन मी एंड द हिल्स अराउंड शुक विद द फीट ऑफ द डिसेंडिंग पावर। आई डिड द राजयोगा इन 3 days विच मैन विद केयर एंड एक्यूरेसी माइन्यूट सीजलेसली फॉलो फॉर एन एज इन वेन। Not Kali's Raj Yoga, but the means of perfect knowledge, purity and force. तो फिर वो Atlantic Kings का राज योग करते हैं और बरसों बैठकर तप करते हैं, और तप द्वारा उनके अंदर वो शुद्ध ज्ञान को स्ट्रीम करता हुआ अपने अंदर पाते हैं, इतना अधिक कि वो स्पिल होकर हिल्स में चारों तरफ फैल जाता है। उनकी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक अर्जित करते हैं और तब वो फिर से जाते हैं। आई केम टू व्यास शाइनिंग लाइक ए सन, ही स्माइल्ड एंड सेड नाउ सीक द वर्ल्ड्स ग्रेट सोल श्री कृष्णा, वेयर ही लिव्स ऑन अर्थ कंसील्ड, गिव अप टू हिम ऑल दैट दाउ नोस्ट एंड हैस्ट, फॉर दाउ आर्ट ही इलेक्ट फ्रॉम मॉर्टल मैन। कहते हैं अब ऐसा करो, जो कुछ तुमने अर्जित किया है ज्ञान शक्ति इत्यादि तपोबल, अब तुम जाके श्री कृष्ण को ढूंढो धरती पर और वहां जाके उनके चरणों में डाल दो। वॉट ए गाइडेंस। एंड देन फॉलो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सारे ज्ञान से सारे तपोबल से जगह जगह ढूंढते हैं कहाँ कृष्ण है, हस्तिनापुर के हॉल में है, युधिष्ठिर के पास हैं, द्वारका में है, कहीं उनको नहीं मिलते। अब खोजते खोजते वो एक पहाड़ पे देखते हैं कि एक अभीर है, निम्न जाति का व्यक्ति है बाहर से, लेकिन वो आनंद से कूद रहा है उस पर्वत में। लेकिन वो क्यों प्रसन्न है इसका वो कारण किसी को नहीं बता पा रहा है, बस आनंदित हो रहा है अंदर ही अंदर। तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण है। तो उस श्री कृष्ण के सामने जाते हैं, ये चार पांच लाइन और। इन हिम आई सॉ द लॉर्ड, बिहाइंड द मैन परसीव्ड द स्पिरिट दैट कंटेन्स द वर्ल्ड। आई फेल बिफोर हिम बट ही लेफ्ट एंड रैन एंड स्मोट मी विद हिज फुट एंड आउट ऑफ मी ऑल नॉलेज ऑल डिजायर All strength was gone into its source. जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे एक किक, he gave me a kick, और जैसे उसने किक दिया मेरे अंदर से सारा ज्ञान शक्ति अहंकार सब कुछ चला गया, अपने सोर्स में चला गया, सब कुछ निकल गया जितना उन्होंने तपोबल से अर्जित किया था। और लास्ट में क्या बचा, आई सैट लाइक एन इन्फेंट चाइल्ड, एकदम मेरे पास तो कुछ भी नहीं, इन्फेंट की तरह हो जाता है, शिशु के बाद उनके चरणों में बैठ जाता है। ही लाफ्ड अलाउड एंड सेड टेक बैक दाई गिफ्ट्स ओ बेगर। ये समर्पण, टेक बैक दाई गिफ्ट्स ओ बेगर। सारी तपस्या सारी साधना योग इत्यादि से सब कुछ जो अर्जित किया वो सब इस प्रकार से भगवान के सामने अर्पित कर देना। अक्सर जब हम योग साधना एक्सपीरियंस रियलाइजेशन कुछ नहीं है उनके सामने। माता जी की अपनी स्टोरी है जिसमें समर्पण और त्याग दोनों का अद्भुत समावेश है। क्या होता है समर्पण और क्या होता है त्याग, हम लोग तो केवल बाहर बाहर से इन चीज़ों को देखते हैं। माता जी जब श्री अरविंद के पास जाती हैं तो उन्होंने क्या कुछ रियलाइज नहीं कर लिया था, जस्ट टू रिकैपिचुलेट, 2 वर्ष की उम्र से वो एक्सपीरियंस करती थी लाइट को उनके अंदर आते हुए। और उनकी माँ जब कहती है उनको, तुम ऐसे बैठी हो लगता है मानो सारे विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, माँ कहती है हाँ ऐसा ही है, ये एक्सपीरियंस करती थी। 10 से 13 साल की उम्र में जब वो निद्रा में होती थी तो बाहर निकलकर विशाल विशाल अति विशाल फैल जाती थी और सारे विश्व ब्रह्मांड के लोग उनको स्पर्श करके सुख शांति इसकी अनुभूति कर रहे हैं। अनेकों अनेकों योगी गुरु उनके पास आ रहे हैं, उनके योग निद्रा की अवस्था में अपना अपना ज्ञान उनको अर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये सब वो एक बच्चे के रूप में अनुभव करती हैं। गीता का योग सिद्ध कर चुकी हैं, राजयोग स्वामी विवेकानंदा का पढ़ के शी हैड रियलाइज द ट्रूथ्स ऑफ दैट योगा। अपने हृदय में जो अंतर्यामी ईश्वर है उनको उनके साथ एकाकार हो चुकी हैं, सुप्रामेंटल चेतना में प्रवेश कर चुकी हैं। ये सब माँ कर चुकी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आने के पहले माता जी ने शांडिल्य भक्ति सूत्र ईशावास्योपनिषद इसको ट्रांसलेट किया हुआ था उन्होंने फ्रेंच में, गीता पढ़ी थी, ये सब कुछ वो कर चुकी हैं। और उसको करने के बाद जब वो श्री अरविंद के पास जाती हैं अल्जीरिया में, जो ऑकल्टिज्म 12 अपने शरीर को 12 बॉडीज में सेपरेट करना नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमारे 7 शरीर होते हैं लेकिन 7 कोश भी सब नहीं जानते, 5 होते हैं लेकिन उसमें से केवल 3 हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्योंकि उसके आगे जो है वो इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। अब वो होगा क्योंकि नई क्रिएशन और सुपरमेंटल रेस आएगी, परंतु अब तक वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं थे। ऑर्गेनाइज्ड केवल 3 कोश मनुष्यों में, फिजिकल अन्न में, प्राण में और मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोश ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके आगे की बात भी नहीं करता है कोई। माता जी 12 कोशों में अपने शरीर को निकाल करके, मृत्यु उनकी कॉर्ड कटने के बाद उसको जोड़ पाती हैं, हर तरह की चीज उन्होंने, कोई ऐसी संसिद्धि नहीं जो प्राप्त नहीं की। और जब श्री अरविंद के पास जाती हैं तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ही होम वी सॉ यस्टरडे इज हियर अपॉन अर्थ। श्री कृष्ण जो उनको श्री अरविंद आते थे लेकिन वो श्री कृष्ण, कृष्ण के नाम से जानती थी, हालांकि उन्होंने इंडियन मिथोलॉजी में कुछ पढ़ा नहीं था, और इंडियन मिथोलॉजी में कृष्ण का उस समय उनको कुछ नहीं पता था। और वो जा करके उनको जब देखती हैं तो ये श्री कृष्ण हैं, और सब कुछ समर्पण करके लिखती हैं अपने नोटबुक में, अपनी डायरी में, कि वे जिनको मैंने कल देखा था वो आज धरती पर उपस्थित हैं, और उनकी उपस्थिति मात्र ही एक आश्वासन है, परम आश्वासन है इस पृथ्वी के लिए कि एक दिन ये सारा अंधकार प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा, चाहे हजारों हजारों मनुष्य इस समय अंधकार में क्यों ना हो। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ, आप माता जी जब आई तो आपने तो कहीं डायरी में कुछ लिखा नहीं, इन्होंने तो लिखा तो सबको पता है, आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया। तो श्री अरविंद कहते हैं, पहली बार मैंने देखा धरती पर इतना संपूर्ण और सर्वांगीण समर्पण, राइट डाउन टू द फिजिकल सेल्स ऑफ द बॉडी, कोशिकाओं तक का समर्पण। और तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि अब दिव्य जीवन का समय आ चुका है। ये होता है समर्पण, सब कुछ प्राप्त करके, सिद्ध करके। वहां ऐसे बैठ गई, और माता जी ने इसका डिस्क्रिप्शन बड़े अच्छे से कहा है कि मैं जब उनसे मिलने गई तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ में थे, तो हस्बैंड तो इंटेलेक्चुअल सवाल करते रहे और श्री अरविंद उसका उत्तर देते रहे। कहती है, मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं था। वो जाके वहाँ बैठ जाती है, और बैठ जाती हैं, और वो क्या चर्चा चल रही है इससे उनको कोई संबंध नहीं। धीरे 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 कहती हैं, अब तक जो कुछ मैंने कंस्ट्रक्ट किया था अपने अंदर सारी सिद्धियों के आधार पर, वो सब कुछ टूट जाता है, और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह माँ वहाँ बैठ जाती हैं। आई मस्ट रीड दैट प्रेयर ऑल्सो, क्योंकि बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। ठीक, मतलब वो इसमें डेट्स नहीं है, डेट्स नहीं, ये तो पत्र है। हाँ, डेट्स हैं इसमें, डेट्स। इट इज सो ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लगता है 3 अप्रैल की उनकी प्रार्थना है, श्री अरविंद को देखने के 3 दिन बाद की है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नए जीवन में जन्म ले रही हूं, और अब भूतकाल के सभी तौर तरीके और अभ्यास उपयोगी नहीं रह सकते। जो कुछ उन्होंने प्रयास किया था, सारी उनकी ऑकल्ट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, योग, तप, सब कुछ, वो कहती हैं पुराने प्रयास अब उपयोगी नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि जिन्हें मैं परिणाम मानती थी वे एक तैयारी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसको कहते हैं त्याग। वह सब कुछ जो प्राप्त करके आदमी आराम से सोचता है कि अब तो मैंने बहुत प्राप्त कर लिया, इसके आधार पर मैं गुरु बन सकता हूँ, स्वामी बन सकता हूँ। माँ कहती है वो तो केवल एक तैयारी थी। यही चीज़ श्री अरविंद में देखने को मिलती है। श्री अरविंद बरिंदा को अपने एक पत्र में लिखते हैं, क्या नहीं उन्होंने प्राप्त किया है, निर्वाण, प्राणायाम से किस हद तक प्राणायाम किया, 6 से 8 घंटे रोज फॉर मंथ्स, और उससे उनकी जो कविता का उतरना, ये सब कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। वासुदेवम सर्वमिति, इसको उन्होंने देख लिया है। तख्ते सुलेमान पर अद्वैत का दर्शन हुआ है, ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वर्ल्ड मदर का। और उसके बाद वो बरिन को अपने पत्र में लिखते हैं, अब तक जो कुछ मैंने प्राप्त किया पांडिचेरी आने के पहले वो मात्र एक तैयारी थी, ये कौन लिख सकता है? कोई और व्यक्ति हो तो इसके बाद कहेगा मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे केवल ब्रॉडकास्ट करना है। नॉर्मल कोर्स में जो उन्होंने अलीपुर जेल में अनुभव किया उसके बाद तो उनको बस जगह जगह जाना था और उसका प्रचार करना था, परंतु श्री अरविंद पांडिचेरी में चले जाते हैं, कुछ और, कोई और चीज है, कहते हैं ये तैयारी थी। वही अनुभव माँ का, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मानो मैंने अभी तक आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया है, केवल उस पथ पर चरण रखे हैं जो उस ओर ले जाता है। दिस इज सरेंडर, दिस इज त्याग, कि मैंने तो अभी तक आध्यात्मिक जीवन जिया ही नहीं। और कौन कह रहा है ये? माँ कह रही है। हम लोग कितने बोस्टफुल होते हैं, मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं, किसी थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ी सी काम कर लिया, थोड़ा उछल कूद कर ली, थोड़ा चुप बैठ लिए, थोड़ा किसी आश्रम में जाके बस गए और हमको लगता है हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। बट लुक एट दिस, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, कि हम कुछ भी नहीं जानते, कि मैं किसी भी चीज की रूपायित करने में असमर्थ हूं, कि सारा अनुभव अभी शुरू होने को है। ऐसा लगता है कि मुझे समस्त अतीत से अनावृत कर दिया गया है, उसकी भूलों से भी और साथ ही उसकी विजयों से भी, मानो वो सब गायब हो गया है और एक नवजात शिशु के लिए जगह तैयार कर दी गई है जिसका समस्त जीवन अभी जीना बाकी है, जिसका कोई कर्म नहीं है, कोई अनुभव नहीं है जिससे वो लाभ उठा सके, लेकिन साथ ही जिसकी कोई भूल भी नहीं है जिसे ठीक करना हो। मेरा मस्तिष्क समस्त ज्ञान और समस्त निश्चिति से खाली है, साथ ही व्यर्थ के समस्त विचारों से भी। कल बात हो रही थी मेंटल साइलेंस, ये मेंटल साइलेंस का सिंपल तरीका, हर क्षण भगवान के सामने ऐसे प्रस्तुत रहना जैसे हम एक छोटे से बच्चे हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। और ये केवल एक, कई बार इसका भी प्राइड, हमने भगवान को समर्पण किया है, किसी प्रकार का वो भाव, वो अवस्था, वो स्थिति, कि जिसमें जो कुछ भी हमने पाया होगा वो कुछ भी नहीं है, इसके सामने जो कुछ हमारे सामने पड़ा है, और इसी को माँ कहती है इट इज द सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ। युवा कौन है? वो है जो जानता है कि जो कुछ भी मैंने अब तक प्राप्त किया है कुछ भी नहीं है, उसको वापस उनको दे देना, उसको स्मरण भी नहीं रखना कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ वैसा हुआ, उसको भगवान को सौंप देना, तेरा है, और बल्कि ये सेफ है, भगवान के बैंक में फट से डिपॉजिट करना चाहिए। जैसे होता है पैसा आया उसको बैंक में डाल दीजिए, नहीं तो व्यर्थ की चीज में खर्चा हो जाएगा। तो जैसे ही आया, माताजी जब रिसीव किया मेडिटेशन में या जब भी कर्म करते हुए, माँ ये संपत्ति तुम्हारी है, तुम संभालो, और खाली हो जाना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, उसको बोझ लेकर के चलना नहीं। ये बहुत बड़ी समर्पण कितना मुक्त करता है हम लोगों को। इट इज द रॉयल रोड टू फ्रीडम, क्योंकि हर क्षण हम इस भाव से जी सकते हैं कि हमारे सामने एक अपार अनंत सब कुछ नया है, और इसमें कितनी उत्साह, कितना उमंग, कि हमें सब कुछ जानना है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ समझना है, सब कुछ जीना है एक नए सिरे से। परंतु इसके ठीक विपरीत हम क्लिंग करते हैं पास्ट से। माता जी से किसी ने पूछा, ये साधना में आपने तो नई चेतना धरती पर स्थापित कर दी है, इसको रिसीव करने के लिए, इसके अनुरूप ढलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माँ का तो पूरा लक्ष्य था योग को सरल करते जाना, क्योंकि अगर हम प्रारंभ में श्री अरविंद की वाणी पढ़ें तो साधारण व्यक्ति कहेगा कि आई कैन नॉट डू इट। माँ उसको सरल करते 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 करते, और 56 में आफ्टर डिसेंट और सरल और सरल और सरल। आप यू रीड थ्रू दी योगा इवोल्यूशन, तो आप देखेंगे कि योग यात्रा ये इवॉल्व की है, क्योंकि ये नया योग है, एक नया प्रयोग है धरती के ऊपर। माता जी अपनी 60s की वाणी में कहती हैं, जो कुछ मैंने 1929 में कहा, जो वॉल्यूम 3 में है, वो बड़ा बचकाना है, माँ कह सकती है, वो तो बड़ा बचकाना है। अब तो मैं ये देखती हूं कि कुत्ते और बिल्ली भी योग कर रहे हैं, सब कुछ भगवान है। और उस समय वो ये बताती हैं पूरा कि दो चीजें बस आवश्यक हैं। क्या चीजें? कहती पहली चीज जो आवश्यक है वो है प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट फॉर द न्यू लाइफ। ओ, हमें उत्साह से भर दे कि एक नया जीवन है जो माता जी पृथ्वी पर उतार कर लाई है। वो क्या है हम नहीं जानते, मेंटल कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं, लेक्चर की जरूरत नहीं कि ये अच्छा वो नया जीवन कैसा होगा, विचार विमर्श हो रहा है, मानो हम समुद्र से बहुत दूर खड़े होकर विचार कर रहे हैं समुद्र में कूदने से कैसा लगता है। आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, लेकिन जब आप कूदेंगे तो जो एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल भिन्न होगा। वो सब चीजें एक तरफ और समुद्र में जाने का एक्सपीरियंस एक तरफ, पहली बार भय महसूस होगा, पहली बार आनंद महसूस होगा, पहली बार विशालता का अनुभव होगा, पहली बार शुद्रता का अनुभव होगा। समुद्र दोनों चीजें एक साथ दिखाता है, एक और विशालता, हम कितने नग्ने हैं उसके सामने, और ये सब कुछ में हम आत्मसात स्वयं को कर सकते हैं। पहली बार एफर्ट महसूस होगा और पहली बार सरेंडर का आभास होगा। समुद्र में एफर्ट ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन एफर्ट चाहिए फ्लोट रहने के लिए, नहीं तो डूब जाएगा व्यक्ति। तो ये इस भाव से जीवन जीना। तो माँ कहती पहली चीज थर्स्ट, केवल किताब पढ़ ली, इंटेलेक्चुअली समझ लिया, सब कुछ जान लिया नहीं, एक प्यास, प्यास, प्यास। और माँ कहती यहां तक कि अगर ये प्यास तुम्हारे अंदर है तो इवन दी वेवर्ड वेज ऑफ दी अमेरिकन यूथ आर ए पाथ। पथ को हम संकीर्ण कर देते हैं, बहुत विशाल है ये पथ, बहुत विशाल है, किस चीज से नहीं गुजरता। एक और माता जी का बड़ा सुंदर एक अनुभव है, जहाँ वो जाती हैं और वो देखती हैं कि जिन्होंने कई योग पथ के लोग आकर उनको कहते हैं आओ मेरा पथ देखो, तो वो देखती हैं, एक खिड़की खुलती है और पथ देखती हैं, एक द्वार खुलता है पथ देखती हैं, फिर वो कहती हैं तो छोटा है, नैरो है, फिर और एक देखती हैं और देखती हैं, नैरो है, नैरो है, कहती है नहीं ये तो सारे पथ बहुत ही नैरो हैं। वे स्वयं ये सब रियलाइजेशन कर चुकी थी। माता जी की एक प्रार्थना है कि तुम मुझे पुराने योग पद्धतियों के सभी रियलाइजेशंस देकर ले लेते हो मुझसे, ताकि एक नई चीज क्रिएट कर सके। इट इज देयर इन हर प्रेयर्स। तो लास्ट में एक व्यक्ति एक पेड़ के पीछे टेक लगा के बैठा है, और वो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो दिख नहीं रहा, वो कहीं विशाल अनंत व्योम में जा रहा है। और वो कहता है माता जी से, आप आकर एक बार, मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, इसको भी चख लें। तो माता जी कहती हैं अच्छा चलो तुम भी दिखा दो तुमने क्या तैयार किया है। तो उसको चखती हैं, कहती इट इज डिलीशियस, तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, तुम्हारा कौन सा पथ है? तो कहता है आई हैव नो पाथ, मेरा कोई पथ नहीं है। अद्भुत, इट इज सो वास्ट, सो वास्ट, हर क्षण एकदम पास्ट को छोड़ देना। तो माँ कहती है अगर ये प्यास है तो एक अमेरिका में एक यूथ जो इधर उधर घूम रहा है, खाली भटक रहा है, लेकिन प्यास को लेकर चल रहा है, वो पथ है, पथिक है वो। और दूसरी चीज कहती है डू नॉट क्लिंग, ये दो माने विशेष रूप से बताए, डू नॉट क्लिंग। और कहते हैं इवन जो कहते हैं डू नॉट क्लिंग, वो क्लिंग करते हैं। किन चीजों से हम क्लिंग करते हैं? आप क्लिंग करते हैं आइडियाज से, ओपिनियन से, व्यूज से, और धीरे धीरे रिजिड हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, बाउंड्रीज बन जाती है, उसी से संकीर्णता, धर्म, मत, मतांतर, कर्म कांड, ये सब वहीं से जन्म लेता है। भगवान तो अति विशाल हैं, अनंत हैं, लेकिन वो धीरे 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 करके संकीर्ण होता जाता है और वहीं से प्रारंभ होता है चीज़ों के विघटन का। बहुत विशाल पथ, लेकिन उसके लिए बहुत साहस, समर्पण के लिए बहुत 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 साहस चाहिए। और जब हम ये साहसपूर्ण कार्य अगर कर पाए कृपा से, ये व्यक्ति वास्तव में, हालांकि समर्पण हमें स्वयं करना है, श्री अरविंद बताते हैं, लेकिन ये सच है कि बिना कृपा के ये होता नहीं। भगवान से एक प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं भी कर पाऊं, तुम छीन लो मुझसे सब कुछ, कुछ रखो ना मेरा अपना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होगी। हालांकि भगवान वो बहुत हेजिटेट करके स्वीकार करते हैं ये, क्योंकि इसमें उनको महाकाली मेथड, लेकिन फिर भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि मैं तो बंधा हुआ हूँ इन चीज़ों से, आप ले लो, हर लो। भगवान का ये रूप भी बड़ा अद्भुत है, इसीलिए काली विकास को द्रुत गति से आगे ले जाती हैं, क्योंकि वो हर लेती हैं वो सब कुछ जो मार्ग में बाधा करता है, हमारा सिर अहंकार नमुंड मालिनी, वो उसको काट कर आगे बढ़ जाती हैं। हम खुद तो नहीं काट सकते, तो वो उसको लेकर के आगे बढ़ जाती हैं। दैट इज सरेंडर, टू बी एबल टू गिव ऑल वी आर, ऑल वी डू, ऑल वी हैव। माता जी कहती प्रारंभ कैसे होता है, गिव ऑल यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसको दे के प्रारंभ होता है। अब देने से क्या अर्थ है, जैसे कल हम पढ़ रहे थे वो नहीं कि अच्छा मैंने सारे अपना बैंक बैलेंस चेक लेके दे दिया, अब ये मान के चलना ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये माँ की है, इसका मुझे केवल वैसे उपयोग करना है जैसे माँ चाहेंगी। माँ की वाणी नहीं सुनाई दे रही तो ठीक है, उन कार्यों में उपयोग करना है जो दिव्यता को, सौंदर्य को, सत्य को बढ़ाएंगे, और उन कार्यों में नहीं लगाना है जो केवल मेरे अहंकार को संप्रसारित करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है, गिव ऑल यू हैव, ये संपत्ति अब मेरी नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, माँ ये धरती का नियम है, लीगलिटी है कि बैंक बैलेंस मेरे नाम से है, चाहे 1,000 रुपए हैं या 1,000 करोड़ है, लेकिन अब इसका मैं वैसे उपयोग करूं जैसे तुम चाहती हो और जीवन बदलने लगेगा, अपने आप बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं छूटेंगे, क्योंकि अंदर में आएगा कि डू आई रियली नीड इट, और फिर गिव ऑल यू हैव, देन गिव ऑल यू डू, नेक्स्ट स्टेप इज गिव ऑल यू डू। ये भाव से ठीक है, ये चीजें भगवान की हैं, अब इसका उपयोग ऐसे करना है, घर भगवान का है, नाम मेरा लगा हुआ है, इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे फिर करेंगे, घर में उस तरह की पार्टीज नहीं होंगी जिसमें शराब सिगरेट लेकर के, क्योंकि आप घर आपका है ही नहीं, मंदिर है वो, तो इट इज़ वेरी, बहुत सारी चीज़ें अपनी आप छूट जाएंगी। घर में ऐसे हम कृत्य नहीं करेंगे, इवन यहाँ तक जा सकता है कि झूठ बोलना या बहुत सारी कामना वासना की चीज़ें स्वतः ही नहीं होंगी, क्योंकि भगवान की जगह कैसे कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में कोई शराब थोड़ी पीता है। इट इज़ एविडेंट कि वो चीज़, या हम अपनी ही इनसिंसेरिटीज हमारे सामने आएंगी कि हम कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं, जब हमने कहा ये घर भगवान का है तो भगवान के मंदिर में हम अहंकार को कैसे सामने रख सकते हैं, अपनी कामनाओं को कैसे सामने रख सकते हैं। देन गिव ऑल यू डू, जो कुछ हम करते हैं, अच्छा बुरा, देखने में प्लेजेंट पेनफुल, भगवान तुम्हारा है। अब इससे क्या होगा, फिर हम धीरे धीरे वो कुछ करने लगेंगे जो भगवान की दिशा में जाए। अभी तो हमारी बहुत सारी चेष्टाएं केवल ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं, और बहुत कम चेष्टाएं होती हैं, एफर्ट्स होते हैं जो भगवान की दिशा में जाते हैं। फिर हम कहेंगे हमारे सारे एफर्ट तुम्हारी दिशा में जाएं, तो कैसे करें, सेंटर आके कार्य करें, क्या करें, बड़ा सिंपल, लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं भगवान हमारे दांत कभी ना गिरें, केश कभी ना गिरें, स्वस्थ रहें, क्यों, ताकि हम अंतिम समय तक, श्वास तक तुम्हारा काम करें। मदर कीप मी फिट एंड फाइन हेल्दी टू डू योर वर्क, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह से ये चीज शुरू हो सकती है। जब स्नान कर रहे हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं इसी चीज की, इस अभिप्सा के साथ स्नान कर सकते हैं। भोजन बना रहे तो हम, कल शायद बात हो रही थी, माँ महालक्ष्मी आप बनाओ, ये प्रसाद बन जाए, तो रोज प्रसाद बनेगा घर में फर्स्ट क्लास, कहीं जाकर प्रसाद मिल रहा है, ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब घर में आपके जो बन रहा है प्रसाद बन रहा है, तो फिर नेचुरली कुछ चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी जो हमको लगता है ये तो हम प्रसाद के रूप में नहीं बना सकते। तो अपने आप जो कुछ हम करते हैं बाहर से, फिर अंदर का करना, अंदर भी बहुत कुछ करते हैं, हमारे विचार वो भी एक एक्शन है, डिजायर्स वो एक्शन है, उनको दे करके। माँ तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे जो इवन जो तुम्हारे बैड थॉट्स आते हैं मन में वो मुझे दो, उससे घबराओ मत, साधु बच्चा बनने की चेष्टा मत करो, बड़ी भयानक चीज़ है वो, अहंकार को पोषित करती है। गिव ऑल यू डू, और लास्ट में कहती है गिव ऑल यू आर, ऑल वी आर। हम अगर ध्यान से देखें कि किसको हम मैं बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ विचार, कुछ भावनाएं, कुछ विचारधाराएं, कुछ मान्यताएं, इनको हम कहते हैं ये मैं हूं, और उसको हम पकड़ करके रखते हैं, भाई मैं तो ऐसे ही हूं, ये नहीं बदलूंगा मैं। तो ये अगर हम नहीं बदलेंगे तो रूपांतरण कैसे होगा? मैं तो ऐसे ही हूं, बस मुझे ऐसे ही बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो अगर भगवान ने ऐसा बनाया तो भगवान आगे जो बनाना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो गिव ऑल यू आर, माँ कहती है सबसे बड़ा सरेंडर होता है सरेंडर ऑफ योर कैरेक्टर, चरित्र का। चरित्र का हमारे संगठन होता है एक विशेष रूप से, एक विशेष रूप से हम जीवन को देखते हैं, संसार को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, जीवन के लक्ष्य को देखते हैं। इन सब को भगवान के चरणों में डाल देना, गिव ऑल यू आर, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अंत कहाँ है? अंतिम श्वास तक अगर हम एक एक श्वास भगवान के चरणों में डाल सके तो जीवन सार्थक होगा। जीवन सार्थक इससे नहीं होता कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या रियलाइज किया, बाहर से क्या किया, ये सब बाहर के लोग देखते हैं, किंतु जीवन सार्थक होता है अगर हमारे अंदर कोई भी चीज हमारी ना बचे और अंत तक एक एक श्वास चला जाए। दैट इज ए लाइफ ऑफ सरेंडर, ए लाइफ फुलफिल्ड। और नेचुरली इसमें बड़ा स्पष्ट है, निष्क्रिय सरेंडर जिसको आमतौर पे सरेंडर कहा जाता है वो सरेंडर नहीं है, वो तो निश्चेष्टा है, वो तो निष्क्रियता है, अकर्मण्यता है, तमस है, आलस है कि भगवान तुम कर दो मेरे लिए सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो तो सरेंडर नहीं है। वो तो नॉर्मल जीवन जैसे चल रहा है, हम अपनी कहते हैं ना कि हमने अपना खाना पूर्ति कर दी, कि सरेंडर कर दिया दो मिनट भगवान के सामने कह के। और दूसरा है सक्रिय सरेंडर। निष्क्रिय सरेंडर है भगवान से ये कहना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम करो सब कुछ। सक्रिय सरेंडर है मैं वह सब करूँगा जो तुम करना चाहते हो मेरे द्वारा, मेरा अपना जीवन अपना है ही नहीं। तो उसमें ओबीडियंस, भगवान के प्रति दासत्व का भाव स्वतः ही जुड़ जाता है, क्योंकि मैं वो सब अब नहीं करना चाहता जो मैं करता रहा हूं, मैं वो करना चाहता हूं जो तुम मेरे द्वारा करना चाहते हो या कराना चाहते हो। मेरे अपने जीवन का और कोई मूल्य और कोई महत्व तो नहीं। बहुत लंबा पत्र है तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। समर्पण से मेरा जो तात्पर्य है वो यही मन और प्राण का आंतरिक समर्पण है। निस्संदेह एक प्रकार का बाहरी समर्पण भी होता है, उन सभी चीजों का अर्पण जो आत्मा के साथ संघर्ष करती हैं अथवा साधना की आवश्यकता को विपरीत रहती हैं। भगवान की पूजा, उनके पथ प्रदर्शन का पालन, चाहे प्रत्यक्ष रूप में यदि साधक उस स्थिति में पहुंच चुका हो, अथवा चैत्य पुरुष के द्वारा, अथवा गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण। मैं ये कह दूं कि प्रायोपवेशन, व्रत उपवास का समर्पण के साथ कोई संबंध नहीं है। आंतरिक समर्पण का सार तत्व है भगवान पर भरोसा और विश्वास। साधक का मनोभाव होता है मैं भगवान को चाहता हूं और किसी चीज को नहीं, मैं पूर्णता अपने को उन्हें दे देना चाहता हूँ, और चूंकि मेरी अंतरात्मा इसे चाहती है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि मैं उनका साक्षात्कार पाऊँ, और मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता, बस मेरे अंदर होने वाला उनका कार्य मुझे उनके पास पहुँचा दे। उनका यह कार्य चाहे गुप्त हो या प्रकट, प्रछन्न हो या अभिव्यक्त, मैं अपने निजी समय और पथ पर कोई आग्रह नहीं करता, वो सब कुछ अपने निजी समय और निजी पद्धति से करें, मैं उन पर विश्वास बनाए रखूंगा, उनकी इच्छा को स्वीकार करूंगा, उनकी ज्योति सानिध्य और आनंद के लिए दृढ़ता पूर्वक अभीप्सा करूंगा। और यदि ये विश्वास है, ये समर्पण है, तो भगवान स्वयं सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। यही मनोभाव है जिसे मनुष्य को अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही इसे तुरंत पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। मानसिक और प्राणिक क्रियाएं आड़े आती हैं, परंतु कोई यदि इसके लिए संकल्प बनाए रखे तो वह सत्ता में विकसित होगा। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि यही पथ एकमात्र है और साधना अन्यथा नहीं की जा सकती। बहुत सारे पथ भी हैं जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की ओर जा सकता है, परंतु यह एकमात्र पथ है जिसे मैं जानता हूँ और जिसमें प्रकृति के लिए तैयार होने से पहले ही भगवान द्वारा साधना का ग्रहण किया जाना प्रत्यक्ष तथ्य बन जाता है। दूसरे पथों में भागवत क्रिया समय समय पर अनुभूत होती रहती है। भगवान द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, हृदय और स्वभाव शुद्ध किए जा सकते हैं, आंतरिक चेतना जागृत की जा सकती है तथा पर्दे दूर किए जा सकते हैं, यदि कोई भरोसे और विश्वास के साथ अपने को भगवान के हाथों में अर्पण कर दे। और यदि कोई तुरंत पूर्ण रूप से ऐसा ना कर सके तो भी जितना अधिक वो ऐसा कर सकेगा उतना ही अधिक आंतरिक पथ प्रदर्शन उसे प्राप्त होगा, आंतरिक सानिध्य साधात्म्य और पथ प्रदर्शन उसे प्राप्त होगा तथा उसके भीतर भगवान का अनुभव बढ़ेगा। यदि संदेहशील मन कम सक्रिय हो जाए और विनम्रता तथा समर्पण का संकल्प सही हो तो ऐसा करना पूर्णतः संभव हो सकता है। दिस इज दी पाथ, द रॉयल रोड, अगर कोई रॉयल रोड योग की है तो ये है, जहाँ हम अपना प्रयास करते हैं किंतु वो प्रयास पर हम आश्रित नहीं होते, हम आश्रित होते हैं भगवान के ऊपर, और वो सब प्रयास वो सब अनुभव भगवान को सौंपते हुए नित नया बनते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जस्ट वी क्लोज विद दिस लाइन, कल बात हुई थी लेकिन बड़ी अद्भुत लाइन है, बार बार याद करने से आनंद मिलता है। माँ कहती हैं, द पाथ इज लॉन्ग बट फेथ मेक्स इट शॉर्टर, द पाथ इज डिफिकल्ट बट सरेंडर एंड सेल्फ गिविंग मेक्स इट ईजी। अरविंद कहते हैं, सेल्फ गिविंग इज द बेस्ट पॉलिसी बट वी शुड नॉट डू इट एज ए पॉलिसी, क्योंकि उसमें अच्छा ये करने से जल्दी हो जाएगा, मिल जाएगा, वी शुड नॉट डू इट एज ए पॉलिसी, इट शुड बी डन एज ए जॉय, क्योंकि और कुछ वास्तव में करने योग्य नहीं है। वी विल स्टॉप हियर।